नमस्कार, दिस इज अखिलेश भार्गव. वेलकम टू HW न्यूज. वी हैव द प्रिविलेज ऑफ स्पीकिंग कन्वर्सिंग विद अ वेरी एमिनेंट एंड स्पेशल पर्सन टुडे. आई हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर नितिन गडकरी, हु आई वुड कॉल द डी फैक्टो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कॉर्पोरेट इंडिया ट्रस्ट हिम. ऑफिशियली Mr. Gadkari is our union minister in charge of road transport and highways. He is also our minister in charge of shipping and ports. And the Honorable Prime Minister has entrusted him with a very key national mission, which is the Clean Ganga mission. And let me tell you, ever since Mr. Gadkari took charge of this responsibility and ministries, he has been a man on a mission. His performance, the performance of his ministries has been outstanding, stellar and exemplary. And it stands out among his peers in the Union Cabinet. Things were not easy when Mr. Gadkari took charge of the key Ministry of Road Transport and Highways. As a result of scams, NPAs and deal making in the sector, road construction in India had come down to just 2 kilometers per day. I am happy to tell you that under his dynamic and transparent leadership, India today constructs roads, highways at the rate of 29 kilometers per day, and his target is to ramp it up to 40 kilometers a day. Apart from being a very dynamic minister, Mr. Gadkari is known for his grounded views on what I call practical economics. Economics which is without the jargon, without the confusing jargon, and which reflects his finger on the pulse of the common man. I am indeed privileged to be in conversation with Mr. Gadkari today. Namaskar, sir.
Namaskar.
HW News mein, sir, aapka hardik swagat hai.
Thank you.
And I am grateful, sir. Is cabinet mein, aapka kaam has been very outstanding. Lekin, sir, we all know, when you started, things were not easy. Apart from, sir, sector mein kaam sthagit ho gaya tha, I think 400 से ज्यादा रोड प्रोजेक्ट्स तो अटक चुके थे, NPAs भरपूर थे. इनफैक्ट अभी भी सर इस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ऑलमोस्ट इंडिया के चौथाई NPAs इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं. सर, ऐसे कठिन परिस्थिति में जहां प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, NPAs हैं, कोर्ट केसेस चल रहे थे, सर हाउ डिड यू रिवाइव दिस सेक्टर?
देखिए, मैंने जब मंत्री पद का चार्ज संभाला तो हमारे विभाग में 403 स्टोल प्रोजेक्ट थे जो बंद पड़े थे, जिसमें काम बंद था. कुछ बैंक के अकाउंट NPA बन गए थे, कुछ बनने की कगार पर खड़े थे, और इसलिए परिस्थिति गंभीर थी. पर उस समय हमने ये तय किया कि हम इसको फिर से शुरू करेंगे. एक बात सच है जो मैं स्वीकार करता हूँ कि 75% इस प्रोजेक्ट बंद होने का कारण सरकार थी. उस समय की सरकार में, UPA सरकार में, 2.5 साल में एक भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया गया. अगर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो कोई काम कैसे करेगा? लैंड एक्विजिशन 5% था, वर्क ऑर्डर दे दिया, लैंड एक्वायर नहीं हुई, इंक्रोचमेंट नहीं हटाई गई, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुई, और लोगों ने प्रोजेक्ट ले लिए, और इसके कारण समस्याएँ खड़ी हुई. तो सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई हम लोग इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें. काफ़ी मीटिंगें मैंने सुबह शाम तक करते रहा, बैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, इन्वेस्टर्स को बुलाकर. और उस समय मेरे विभाग ने 22 कैबिनेट डिसीजन करने के लिए हमने नोट मूव की, और माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी दोनों के सहयोग से हमने 22 कैबिनेट डिसीजन लिए. और हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ, कहीं डील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमने मार्ग निकाले. द बेसिक पॉलिसी हमारी ये थी कि पॉजिटिव अप्रोच, फुल ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और किसी प्रकार से ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हो जाए. मैंने हमारे लोगों को कहा कि हमारा पर्पस इतना ही है कि हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम कैसे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा हम हाईवे कैसे बने, अब दूसरे चीज़ों पे आप डाइवर्ट मत हो जाइए. पॉजिटिव अप्रोच में मार्ग निकालिए. और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट थे, लगभग 3.75 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो थे उनने उसके समाधान ढूंढे. 40-50% में टर्मिनेट कर दिया जो सुधरने लायक नहीं थे. जो सुधरने लायक थे उस पर काम शुरू किया, और जो करने वाले स्थिति में आधे पड़े थे उसको रिप्लेसमेंट लिया बैंक के सहयोग से. और लगभग हमने, अभी भी 5-10% प्रॉब्लम होंगे क्योंकि वो कोर्ट केस है, लिटिगेशंस हैं, हमने प्रॉब्लम सॉल्व की और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे विभाग ने भारतीय बैंकों को 3,00,000 करोड़ के NPA से बचाया। अब काफ़ी स्मूथ, और अब हमने निर्णय किया है कि 80% 70% लैंड एक्विजिशन के बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे, फाइनेंशियल क्लोजर के बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे, यूटिलिटी शिफ्टिंग और इंक्रोचमेंट हटाना होगा, और राज्य सरकार को कहा कि ऐसा नहीं होगा, ये सब काम आपको पहले करने पड़ेंगे, अगर आप जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे। आज की अखबार में आया है कि इसका NHI का स्लो डाउन हुआ है, 30 से 40% इस बार अवार्ड कम होगा। अवार्ड तैयार है देने के लिए, करीब 100-150 प्रोजेक्ट ऐसे कि जो हम दे सकते हैं, पर हमने रोक के रखा कि इतना करो, और मुझे लक्ष्य ध्यान में कि 1-2 महीने में सब हो जाएंगे और एकदम 4,000-5,000-6,000 किलोमीटर का अवार्ड भी हो जाएगा। पर हमने ये इसलिए रोका कि नहीं ये करो, इसके सिवा हम अवार्ड नहीं देंगे, नहीं तो हमारे ऊपर क्लेम आते थे। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, पर करते समय ये ध्यान में आया कि कॉन्ट्रैक्टर की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ख़त्म हो गई, इंडियन इन्वेस्टर करने की स्थिति में नहीं है, तो हमने हाइब्रिड NUT करके एक नया मॉडल लाया। और नया मॉडल की विशेषता ये थी कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में 40% हम गारंटी नेट देंगे, 80% लैंड हम एक्वायर करेंगे, यूटी शिफ्टिंग सब करके देंगे, और उसको केवल 60% पैसे लाना है, उसमें से 30% उसको लाना है उसके, और बाकी बैंक से, बाद में टोल भी हम ही कलेक्ट करेंगे, और बैंक को NUT बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर पैसा भी हम ही रिटर्न कर देंगे। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रॉफिट मिला, और फिर टोल में वो भी हमने कहा कि कैपिटल कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस 3%, तो 3% में वो टोल कलेक्शन में उसको वो भी पैसा मिला। तो मुझे लगता है ये इतना अच्छा हुआ कि इसके लिए बहुत लोगों ने 2,00,000 करोड़ के हमने इसमें प्रोजेक्ट निकाले हैं, लगभग दे दिए हैं, और अभी काफ़ी जोरों में काम शुरू है। और इससे क्या होगा, स्टील सीमेंट इन सबको, इस इंडस्ट्री को जाना ही। दूसरा, आज ही मैंने फाइल पर साइन किया, शायद 8 दिन में हम प्रकाशित करेंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट किया उसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना खड़ा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पोटेंशियल तो ये टेम्प्ररी होता है, क्योंकि रास्ते का काम बंद हुआ तो नहीं होता, हम कम से कम 40 से 50 लाख लोगों को रोज़गार दे सके, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में रेवेन्यू दे सके। दूसरा, हमने जहाँ पानी का शॉर्टेज था वहाँ हमने कुछ नए इनोवेटिव निर्णय किए, कोई ब्रिज कम बंधारा बना रहे हैं, जैसे लातूर में जहाँ ट्रेन से पानी आया था वहाँ हम लोग 3 ब्रिज कम बंधारे बना रहे हैं, महाराष्ट्र में 170 ब्रिज कम बंधारे 170 बना रहे हैं। फिर हमने अभी वाशिम, अकोला और बुलढाणा जिला जो एकदम सूखाग्रस्त है वहाँ हमने राज्य सरकार के सहयोग से एक नोटिफिकेशन निकाला कि नाले और नदियों को हम खोलीकरण करेंगे, रुंदीकरण करेंगे, और ये मटेरियल हम फ्री ऑफ चार्ज यूज़ करेंगे रोड के लिए। फिर किसी किसान के पास अगर वो परमिशन, उसके खेत में हम लेक बना देंगे तो मिट्टी हमको दे दो। फिर हमने सरकार के लिए ऐसी अनेक योजनाओं में काम किया, इसके कारण वाटर कंजर्वेशन का करोड़ों लीटर हमने पानी का स्टोरेज खड़ा किया, 1 रुपया ना खर्चा करते हुए। पानी आम के आम गुठली के दाम। बुलढाणा, अभी नई नदियाँ पुनरुज्जीवित हुई, नई नाले पुनरुज्जीवित हुए, वाटर कंजर्वेशन बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ी, किसानों का और गरीबों का भला हुआ, कॉन्क्रीट रोड बना रहे तो रोड से अच्छा काम हुआ। और दूसरी ओर हमने ब्रिज कम बंधारे से अनेक जगह पर पानी रोका, उसका भी पानी इरीगेशन के लिए, पीने के लिए मिला, हजारों गाँवों के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा अप्रोच जो था वो किसी भी प्रकार से काम कैसे करें, और मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरे विभाग में अभी तक मैं 10,00,000 करोड़ रुपए के काम अवार्ड कर चुका हूँ, पर मैं आप जैसे मीडिया के सामने छाती निकाल कर ये बात कर सकता हूँ कि एक भी काम के लिए 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस। हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम कॉन्क्रीट के रोड बना रहे हैं, और मैं कहता हूँ 60-70-100 साल 3-3 पीढ़ियों तक गड्ढा नहीं पड़ेगा, ऐसे बड़े बड़े रोड बना रहे, अब एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। तो मुझे लगता है कि जो 21वीं सदी की नई भारत की सोच प्रधानमंत्री रखी है उसके लायक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का बनाने में हम काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, तो हमारे देश में 52,00,000 किलोमीटर रोड लेंथ है, उसमें से 96,000 केवल नेशनल हाईवे था, और देश में 40% ट्रैफिक 2% रोड पर था। अभी हमने 96 को 170 तक किया, वह 1,70,000 तक लेके गए, और ये जब रोड बनेंगे तो देश का 80% ट्रैफिक राष्ट्रीय महामार्ग पर होगा। और मेरी कोशिश है इस साल 9 करोड़ व्हीकल बढ़े, उसके बावजूद एक्सीडेंट रेट 4.5% कम हुआ। तो मैं 1.5 लाख लोगों की जान हमको बचानी है, और ये कठिन काम है, क्योंकि मैं ये 4.5% से खुश नहीं हुई पिछले साल के मार्च तक का, अभी मार्च में नया आएगा। मैं कम से कम 50% लोगों की जान बचाना चाहता हूँ। ऑटोमोबाइल ग्रोथ में हर समय 22% ग्रोथ है, व्हीकल्स बढ़ रहे, गाड़ियाँ बढ़ रही, और हम रोड नहीं बढ़ा रहे, हम विड्थ नहीं बढ़ा रहे। तो हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जाना पड़ेगा, रोड को अच्छा बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेस हाईवे बनाने होंगे, और पोल्यूशन की दृष्टि से अल्टरनेटिव फ्यूल का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करके हम इस पर काम कर रहे हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमने लाया है, वेबकॉस करके वाटर रिसोर्सेज में मेरी गवर्नमेंट की कंपनी है, उन्होंने डॉफल मेयर करके ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ अब टेक्निकल जॉइंट वेंचर किया है, रोप वे, केबल कार, फेनोकुलर रेलवे, डबल डेकर बस 250 लोग लोगे हवा में चलेगी। तो वो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत कम है। मैंने नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो का निर्णय किया, अभी ब्रॉडगेज मेट्रो आ रही है, वो मेट्रो की कैपिटल कॉस्ट 350 किलोमीटर है, ब्रॉडगेज मेट्रो की 5 करोड़ है, क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पे चलने वाला है, वही सिग्नल सिस्टम, वही रेल सिस्टम। तो मुझे लगता है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल, अच्छा एयर कंडीशन, डबल डेकर इलेक्ट्रिकल बसेस, डबल डेकर इथेनॉल बसेस, बायोफ्यूल बसेस, ब्रॉडगेज मेट्रो, रोपवे, केबल कार, फेनोकुलर रेलवे, नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 1,00,000 करोड़ का। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारा कितना अप्रोच नेशनल इंटरेस्ट में है। अगर हम मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और मुंबई, दिल्ली ऐसा करते तो हमारी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 7.5 करोड़ पर हेक्टर आती। पर अभी हमने जो किया है वो बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो ये पूरे ट्राइबल एरिया से जा रहा है। तो ये 12 लेन का एक्सिस कंट्रोल हाईवे सीमेंट कंक्रीट का, 220 किलोमीटर की विड्थ हमने इसके लिए एक्वायर की है, और इसलिए इस रोड से हमने केवल 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पे बचाया है। और वडोदरा मुंबई 44,000 करोड़ के काम भी हमने अवार्ड कर दिए। अब दिल्ली से जयपुर रिंग रोड का भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में रोड सेक्टर को बड़ा करते समय हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें नई टेक्नोलॉजी कैसी आए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अल्टरनेटिव फ्यूल, नई टेक्नोलॉजी, और 1 अप्रैल 2020 से हमने मैंडेटरी किया है कि हमारे जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के नॉर्म जो है एनवायरनमेंट के, वो हम लोग 1 अप्रैल 2020 से Euro 6 के मैंडेटरी कर रहे हैं। तो ये नॉर्म करने से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर में होंगे, और इलेक्ट्रिक एज ए फ्यूल को यूज़ करने के लिए, बायोफ्यूल को यूज़ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें किसानों का भी फायदा होगा, देश का फायदा होगा, 8,00,000 करोड़ का इम्पोर्ट भी कम होगा, और ये 2-3,00,000 करोड़ अगर किसानों के पास जाएंगे तो गाँव का इकोनॉमिक्स बदलेगा, यही सोच इसके पीछे है।
सर, मेरा आपसे ये सवाल है, एंड विच इज़ वे सर आपकी एक्सपर्टीज अद्भुत रही है। आपने जब मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला, कॉन्ट्रैक्टर्स, सरकार और बैंक्स एनपीए में अटके हुए थे, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इट मींस सेक्टर स्थगित था, सर आप उसमें से कैसे निकले?
देखिए, एक तो पहले ऐसा है कि मैंने पहले मीटिंग बुलाई, सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू थी, रात को 11-11 बजे तक मैं बैठा, और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मैंने समस्याएं समझ ली, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉब्लम क्या है, बैंकर का प्रॉब्लम क्या है, डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम क्या है, सरकार की नीतियाँ क्या है। तब मुझे ध्यान में आया कि इन सबको सिरझोल करने के लिए कुछ अलग अधिकार भी चाहिए, निर्णय कुछ चाहिए। और उस समय मैंने कैबिनेट में जाकर 22 निर्णय किए, हमारे वित्त मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सहयोग किया, और इसके कारण हम इस सेक्टर को बचा सके। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, मैंने हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को, आपका काम रोड बनाना है, कोर्ट केसेस लड़ना नहीं है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना नहीं है, आप पॉजिटिव अप्रोच रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, और रोड बनाना ये हमारा काम है, एक्सीडेंट हो रहे रोड बनाकर लोगों की जान बचाना हमारा मिशन है, लोगों को अच्छा क्वालिटी रोड देना ये हमारा काम है, आप ये बाकी विषयों में मत फंसिए।
आपने एज आई अंडरस्टैंड एनपीएस बाहर निकले बिकॉज ऑफ कोर्ट केसेस में फंसना नहीं है, या एज आई कैन सी कॉन्ट्रैक्टर्स।
आपको एक बात मैं बता दूं, हिंदुस्तान की कुछ कमियां हैं, हमारे कोर्ट में सालों साल निर्णय नहीं होते, और टाइम क्लॉज जो है, आप एक समझ लो, जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो समय का महत्व कभी नहीं समझते, जो 100-200, 500-800 करोड़ बैंकों से कर्जा लेता है उसको 1 दिन डिले ने लाखों रुपए की चपट लगती है, और इसलिए हमारे सिस्टम में कुछ सुधार हमने किया और भी करने की आवश्यकता है। पर जो हमारे आर्बिट्रेशन में कैसे जाती है, उनका नियम 3 महीने में निर्णय होना चाहिए, आप 3-3 साल लेके बैठे हो, कितना स्ट्रेस आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर, 3 महीने में आर्बिट्रेशन हो, हाई कोर्ट में केस जाए 6 महीने में निर्णय हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए 6 महीने में निर्णय हो, अगर ये निर्णय नहीं होंगे और लाखों करोड़ के ऐसी पेंडिंग पड़ेगी तो इकोनॉमी कहाँ जाएगी, देश का कितना नुकसान होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर मर जाएंगे, इन्वेस्टर लंबे हो जाएंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इकोनॉमी की निगेटिव दिशा में जाएगी।
आप एक वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री हो और आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव रही है सर, ये विजडम बैंकिंग सेक्टर में ओवरऑल क्यों नहीं अप्लाई किया गया?
अभी मुझे बताइए, अभी हमने सेक्टर को सुधारा, बीच में रिजर्व बैंक ने ऐसे सर्कुलर निकाले, आज कोई बैंक गारंटी नहीं देता। आज जब हमने सेक्टर की हालत ख़राब थी, जब लैंड एक्विजिशन नहीं हो रही थी, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं था, तब बैंकों ने फाइनेंस किया, और आज मैंने हमने स्थिति बदली, सब अच्छा हो रहा है, गोल्डन माइन जैसे अभी सेक्टर बन गया, अब बैंक गारंटी नहीं दे रही, बैंक लोन नहीं दे रही, बैंक डिमोरलाइज हो गई। और मैं रिजर्व बैंक से ही अपेक्षा करता हूँ कि हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्री अप्रोच रखना चाहिए, जो फ्रॉड है, जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। पर आखिर बिजनेस में कोई अगर अड़चन में आता है तो हर समय वो फ्रॉड नहीं होता, यही बात मैंने कही थी।
Yes.
आप मुझे बताइए, कभी इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी के कारण अड़चन आती है, कभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी के कारण अड़चन आती है, कभी इंटरनल इकोनॉमी में आती है, कभी रिसेशन के कारण आती है, और कभी बिजनेस साइकिल होती है। एक आदमी 40 साल प्रॉफिट में है और 41 साल अगर वो प्रॉब्लम में आता है तो तुरंत वो फ्रॉड है और लोन देने वाला गलत है, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर डिफॉल्केशन इज मैलाफाइड और बोनाफाइड। जो फ्रॉड लोग हैं उनको जेल में डालो, कड़क कार्रवाई करो, जिनने फ्रॉड लोन दिए उनको छोड़ो मत, पर जो बोनाफाइड डिफॉल्केशन है उनको मदद करके बाहर निकालना होगा, जैसे अभी हमारे सरकार ने किया। स्टील इम्पोर्ट आ रहा था, स्टील इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, हमने चाइना से इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगा दी, आज स्टील इंडस्ट्री रिवाइव हो गई, बैंकों के पैसे मिल गए, हमको अच्छी प्राइस मिल गई। हमारा अप्रोच पॉजिटिव, ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और दूसरे को मदद करने वाला चाहिए। अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसको ICU में एडमिट करते हैं, फिर कोई बोलता है सलाइन दो, कोई बोलता है इंजेक्शन दो, हमारे बैंकर कहते हैं पहला आ जाए वो आ गया, एडमिट करो, उसका गला दबाओ, अड़चन में और गला दबाएंगे तो कैसे होगा।
हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो सरकार के ही हैं सर, ये विजडम उनमें क्यों नहीं आया, हम अभी भी NPA प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं।
देखिए NPA पावर सेक्टर के हैं, मुझे बताइए आपने पावर सेक्टर में फाइनेंस किया और कोल ही नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चली गई, अब कि कोल नहीं मिलेगा तो पावर प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, फिर पावर प्रोजेक्ट दिया तो PPA नहीं हुआ। देखिए वी हैव टू आइडेंटिफाई, जैसे आपको तकलीफ हो रही शरीर के लिए तो क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल में डायग्नोसिस किया जाता है, ब्लड लिया जाता है, स्टूल लिया जाता है, चेकिंग होता है, पहले डायग्नोसिस आपका प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। सोल्यूशन ढूंढने का काम बैंकर का है तो बैंक ने करना चाहिए, सोल्यूशन ढूंढने का काम सरकार का है तो सरकार ने करना चाहिए, और सोल्यूशन निकाल कर अगर उसका उपाय ढूंढेंगे तो होगा। मैंने आपके हाथ और पैर बांध दिए हाँ, और मैंने फिर नोटिस दिया, आप चलते क्यों नहीं, आप दौड़ते क्यों नहीं, मतलब क्या है? मैंने ये पहले अनुभव किया कि भाई दिस इज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एंड एज ए गवर्नमेंट इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजॉल्व दिस इशू, और वो इशू हमने पॉजिटिव अप्रोच में सॉल्व करने की कोशिश की। अगर गलती हमारी थी तो एक्सेप्ट की, उनकी गलती थी तो उनको कहा ये गलत है आपने किया है, तो हमने हर समय सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
गडकरी जी, आपका ये जो पॉजिटिव अप्रोच है सैडली बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई नहीं हुआ। मैं आपको सर एक दूसरे विषय पर ले जाना चाहता हूँ, आपकी जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज 10% ऑफ आर GDP, इट इज़ नॉट स्मॉल, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए सैकड़ों इंडस्ट्रीज हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है फाइनली उन पे जाता है। सच एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर सर, अभी तक जो विदेशी निवेश FDI आया है, मैं 2000 से 2018 के आंकड़े पकड़ रहा हूँ, DIPP के हैं, ओनली 3% ऑफ FDI केम इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। सर इसके क्या कारण है सर?
मुझे लगता है अभी बड़े प्रमाण पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैं आपको एक ही बात, हमने TOT मॉडल निकाला
हाँ सर,
और 9 प्रोजेक्ट निकाले, हमको 5,400 करोड़ एस्टिमेट था, हमको 9,800 करोड़ मिले, 150 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने लिया, अभी हम दूसरा टेंडर अभी रिसीव किया है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, काफ़ी इंडियन प्रोजेक्ट जो पूरे हुए हैं, अभी कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, UK, अमेरिकन फंड ने ली खरीदी है, और मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि हमें हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी, हमारी निर्णय प्रक्रिया, हमारे पास ये जो लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम से इसको रिजॉल्व करना, प्रोजेक्ट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, टोल इकट्ठा करने की सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स और ट्रांसपेरेंसी, निर्णय प्रक्रिया फास्ट करना, तो मुझे लगता है जितना हमारा क्वालिटेटिव रिफॉर्म हमारे सिस्टम में होगा उतना इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, पर मैं दूसरी बात बता दूँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए पर इंडियन इन्वेस्टर को भी हम क्यों नहीं इनकरेज करें?
सर नहीं आया इस सेक्टर में,
ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको तो मैं बॉन्ड में जा रहा हूँ, अभी मैं बीच में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आया था कोचिन शिप यार्ड के लिए, मुझे 1600 करोड़ चाहिए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, 76 टाइम ओवर सब्सक्राइब, मुझे 1,26,000 करोड़ मिले। अभी मैं NHAI के बॉन्ड लेके अगले महीने में आ रहा हूँ जनवरी में, मेरे पास पैसे ही पैसे। अभी स्टेट बैंक के MD साहब ने मुझे 25,000 करोड़ दिए, LIC तैयार है पैसे देने के लिए। देखिए मैं ये भी जानता हूँ, यानी इसमें अन्यथा मत लीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेलकम है, पर मैं अब हिंदुस्तान के छोटे लोगों की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना चाहता हूँ। कोई नौकरी करने वाला है, अगर वो बैंक में डिपॉजिट करता उसको 6% साढ़े डिपॉजिट नहीं मिला, मैं बोलता हूँ मैं 8.5% दूंगा तुमको ब्याज, तुम लाओ NHAI में बॉन्ड, मंथली ब्याज दूंगा, 3 मंथली दूंगा, 6 मंथली दूंगा, ईयरली दूंगा, इन्वेस्ट करो। और गरीब लोगों के पैसे से मैं रोड बनाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं 9.5% जाकर डॉलर में बाहर के लोगों को रिटर्न देने के बजाय मैं हिंदुस्तान के सरकारी नौकर, कांस्टेबल, पुलिस वाला, टीचर, पत्रकार, ये छोटे लोगों की इन्वेस्टमेंट पे मैं काम क्यों ना करूँ, क्योंकि इसको मेरा सोशल थिंकिंग है। अब मैं कैपिटल मार्केट में जा रहा हूँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जनवरी में, और मैं इन लोगों को अपील करूंगा कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, 100% ट्रिपल ए रेटिंग है NHAI का।
सर मुझे आपसे उसके दो सवाल हैं। सर NHAI इज अ मॉडल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिपल ए रेटिंग है इसके कारण। सर बाकी PSUs पे इस तरीके की क्रेडिट रेटिंग क्यों नहीं आई? सर
देखिए मैं आपको, हमारे 12 मेजर पोर्ट प्रॉफिट में है,
आपके लीडरशिप में
ऐसा नहीं है। देखो सभी लोग काम कर रहे हैं।
NHAI जैसा ट्रिपल रेटिंग बाकी PSUs को क्यों नहीं आया? सर
अभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में सब नवरत्न कंपनियां हैं, अभी हमारे वाटर रिसोर्सेज में ये जो तुम्हारी, मैंने वेबकॉस का नाम लिया, 55 देशों में काम।
सर टेक एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट फेल हुआ, ट्रिपल रेटिंग क्यों नहीं आई? सर आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, आपका जो विजडम है या एक्सपर्टीज है वहाँ क्यों नहीं गया?
देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, हमारे एक कहावत है, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता बेकारी। राजा का काम बिजनेस करना नहीं है, राजा का काम पॉलिसी तय करने का है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी कोई सोचे धीरे धीरे सरकार का हस्तक्षेप कम करो, और ये जिसको करना उसको करने दो। हाँ जहाँ कोई नहीं जाता और जहाँ आवश्यक है वहाँ के विकास के, वहाँ हम जाएँ, हम क्यों जाएँ? अभी मुझे बताइए रोड में, मैंने जब पहली बार महाराष्ट्र में BOT और PPP में पहला का प्रोजेक्ट मैंने देश का शुरू किया था, तो मुझे याद है हमारे मित्र RR पाटिल, जयंत पाटिल मुझे बोलते थे, मैं मंत्री था, सरकार भी क्यों नहीं BOT पर चलाने के लिए दे रहा, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, ठाणे भिवंडी बाईपास, उस समय महाराष्ट्र में 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे की, तो लोगों ने मुझे बहुत टीका टिप्पणी की। फिर मैंने उनको जवाब दिया कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बाहर की इन्वेस्टमेंट लाकर, मेरा पहले प्रायोरिटी ये है कि मेरे बजट में पैसे कम है, मैं मेड़घाट में, गढ़चिरौली में, ठाणे जिले के आदिवासी क्षेत्र के रोड बनाना चाहता हूँ, वहाँ वायबिलिटी नहीं क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। अगर मुंबई के फ्लाईओवर इस पैसे से मैं बनाऊंगा तो उनके पास, उनके लिए पैसे नहीं रहेंगे, इसलिए मुंबई के फ्लाईओवर, एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा मैंने प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट से किया, और गवर्नमेंट का बजट पूरा ट्राइबल गरीबों के लिए यूज़ किया, विलेज कनेक्टिविटी यूज़ किया। द इंस्पायरेशन बिहाइंड प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज गिविंग मोर प्रायोरिटी रूरल पुअर एंड एग्रीकल्चर पीपल, ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री, ये इंस्पायरेशन था।
सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपने सर FDI की बात की थी, सागरमाला प्रोजेक्ट या इंडियन वाटरवे, सर क्या उसमें FDI आ रहा है?
बिल्कुल आ रहा है,
आ रहा है।
हाँ, अभी आपको बताता हूँ, सागरमाला 16 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, 4 लाख करोड़ के हम काम शुरू कर चुके हैं, 80,000 करोड़ काम पूरे हो गए। आपको मालूम है ये पनवेल से JNPT का एक रोड था, अभी आप बनकर पूरा हुआ, अभी 2-4 में उसका उद्घाटन होगा,
खड्डों के लिए मशहूर था,
मशहूर था वो, कॉन्क्रीट का बना, अभी 4 लेन इधर 8 लेन का रोड बना। तो उस समय हमारे चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर, मैंने उनको पूछा कि भाई, बोले हम लोन ले रहे हैं ICICI बैंक से, बोले क्यों, बोले 11% से, मतलब डॉलर में क्यों नहीं ले रहे, हेजिंग मत करिए, आपके पास डॉलर में टर्नओवर है, हमारे टोटल पोर्ट में 5,000 करोड़ टर्नओवर डॉलर का है, ला डॉलर वापस करिए। आपको ताजुब होगा, स्टेट बैंक कैपिटल और DBS बैंक ने हमको 2.25% पे डॉलर में कर्जा दिया और उससे हमने रोड बनाया। ये एक प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही है। हमारे पोर्ट में बड़े बड़े दुबई की कंपनी और ये हमारा सिंगापुर की कंपनी, बड़े बड़े कंपनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी इनलैंड वाटरवेज को हमने ओपन किया, अभी JNPT में 125,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा केवल। अभी हम लोग पेट्रोकेमिकल क्लस्टर बना रहे, फर्नीचर क्लस्टर बना रहे, केमिकल क्लस्टर बना रहे, ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स बना रहे, और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कोस्टल डेवलपमेंट जोन बना रहे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और JNPT 125,000 लोगों को रोजगार देगी और 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक बड़ी मोबाइल कंपनी है, मोबाइल फ़ोन बना रहे, वो 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 40,000 लोगों को इन्वेस्टमेंट करके 100,000 लोगों को रोजगार देना चाहती है, लगातार आ रहे हैं। तो मुझे लगता है सागरमाला में 16,00,000 करोड़ में से 4,00,000 करोड़ के काम शुरू किए। मैंने पोर्ट रेल कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन खोली, 24,000 करोड़ के काम उनको दिए हैं, उन्होंने अभी करीब 350-400 काम पूरे किए हैं। मुंबई मनमाड़ से इंदौर हम रेलवे लाइन बना रहे 8,000 करोड़ की, तालचेर से पारादीप 8,000 करोड़ की रेलवे लाइन बना रहे, 24,000 करोड़ काम वो भी उनको और दिए है। हमने सब में काम किया है और हम कोई सरकार के बजट से नहीं कर रहे, मेरा बजट 800 करोड़ का है। सागरमाला में हम लोग जो काम कर रहे हैं ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं। देखो पोर्ट का मॉडल क्या है, लैंडलॉर्ड पोर्ट है, हम लैंड एक्वायर करते हैं, फिर ब्रेक वाटर बनाते हैं और वो पोर्ट का रोड बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, और बाद में हर इसको हम लोग PPP मोड पे दे देते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर आते हैं वही काम करते हैं पूरा। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ प्राइवेट मॉडल है वो, और वो सक्सेसफुल है, और इसीलिए आज हमारे पोर्ट को 6,500-7,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ है।
इन माई ओपिनियन डिस इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल। एयर इंडिया जिस कारण से इन्वेस्टर्स नहीं आए, हम सर डिस इन्वेस्टमेंट को तब सक्सेसफुल मानेंगे जब प्राइवेटाइजेशन हो। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदते सर, दैट इज नॉट रियली द स्पिरिट ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट। आपका जो सर मंत्रालय है इट इज लोडेड विद एसेट्स, और वहां पे अगर आपके एसेट्स मोनेटाइज होने स्टार्ट हो गए तो सर ह्यूज फंड्स विल बी रेज। सर उसमें सर आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है सर?
देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो एक आपको बता दूँ, अरुण जेटली और मैं, मेरी कमेटी हमारे दोनों की, हमने अभी तक 150,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया है। हम लोग रोज मैं फाइल पे साइन करता हूँ और हम लोग बड़े प्रमाण।
बट सर अगर ONGC HPCL को खरीदते इज दैट नॉट डिसइन्वेस्टमेंट सर?
नहीं, मेरा मत है कि सरकार की जो अच्छी कंपनियाँ चल रही है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको नहीं बेचना चाहिए। मैं आपको एक बता दूँ, एक उदयपुर में हिंदुस्तान कॉपर करके कंपनी, ये कंपनी हमने उसके कुछ 46% शेयर रखे और 400 करोड़ में बेची, ये अनिल अग्रवाल जी ने ली थी स्टरलाइट वालों ने। आज वहाँ हमारे 46% शेयर की कीमत 55,000 करोड़ है। सरकार ने अब अपने शेयर रखकर प्राइवेट को देकर शेयर की वैल्यू बढ़ाकर पैसे लेना चाहिए, असेट बनाना चाहिए। आज अगर हम उसको बेचते हैं तो क्या आती कीमत? 800 करोड़ आती, पर हमने शेयर रखे तो आज हमारे 56,000 करोड़ हुए। वैसे मॉडल पर हम काम कर रहे हैं और धीरे धीरे सरकार के तरफ से हमने ये कोशिश की है कि हम बिजनेस चलाने का जो इकोनॉमिकली नॉन वायबल है, लॉस मेकिंग है, ख़त्म करें। अभी एक हुबली डॉक करके कंपनी थी कलकत्ता में, हमने पूरे लोगों को VRS दिया, वो कोचिन शिपयार्ड को दी और बार्ज के स्पेशल डिज़ाइन बनाए कि 2,000 टन माल लेके जो बार्ज जा रहा था वही सेम इंजिन पर 3,500-4,000 टन लेके जाएगा। जर्मन टेक्नोलॉजी लाई है, अब वो कोचिन शिपयार्ड वहाँ बना रही है। हमने पोर्ट खरीदे, आपको ये दिघी पोर्ट है, हम लोग पहला हमारा कोटेशन हमने टेंडर भरा NCLT में, हम उसको खरीद रहे। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्राइवेट लोग खरीद रहे, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट खरीद रहे। तो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जो प्रॉफिट मेकिंग है वो सरकार ने चलाने चाहिए, जो लॉस मेकिंग है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उसको ऑक्शन करना चाहिए। ऑक्शन करते समय बहुत ही ख़राब है तो ऑक्शन करो, या फिर 49% इक्विटी अपने पास रखो, 15% उसको दे दो और जैसे उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी उससे रिटर्न अर्निंग करो। अब मैंने एयर इंडिया में भी कोशिश कर रहा है।
मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स आपकी मिनिस्ट्री के सर, उस पर सर क्या प्रोग्राम चल रहा है?
ये देखो ये TOT के 9 मॉडल हमारे तैयार है, 2,00,000 करोड़ मुझे मिल सकते हैं। अभी पहला मॉडल का हुआ है, मैंने बताया 150 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, दूसरे मॉडल के कल सो टेंडर हमने परसों रिसीव किया। प्रॉब्लम क्या है कि पैसे की कमी नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, हम TOT में पैसा मिला है, फाइनेंस वालों ने अपने सेंट्रल किटी में डाल दिया, हमारा टोल भी बंद हो गया और हमारा पैसा भी रख दिया। अब जो पैसा एसेट में खड़ा होगा वो हमारा है, वो तो हमको देना चाहिए, वो देंगे तो हम रोड बना पाएंगे, रोड बनाएंगे तो और कर पाएंगे। तो ये कुछ सरकार में कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं। तो फिर हमारे सेक्रेटरी मैंने कहा कि अगर हमारा पैसा लेके अगर हमको ही नहीं दे रहे तो हम टोल को लेकर नुकसान क्यों करें, टोल लेते रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ लेवल पर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं, पर वो बातचीत करके निपट सकते हैं। तो ये आज मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी में इसी पैसे को हम लोग TOT मॉडल में देकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाकर हम कर सकते हैं। हम काफ़ी हमारे रोड मॉडल को प्राइवेट वाले भी अलग अलग मॉडल में जा रहे हैं और वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और हमारे पोर्ट सेक्टर में आ रही, अब इनलैंड वाटरवेज खुला है, 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा और 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ, और लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी आज 16% है, चाइना में 8 से 10% है, UK में 12% है। और ये 10 रुपये अगर रोड से जाने के लिए लगते हैं और 6 रुपये रेलवे से लगते हैं, तो पानी से 1 रुपया लगता है। अभी हम लोग 25,000 टन शुगर वाराणसी से, कलकत्ता से बांग्लादेश भेज रहे हैं। अब मुझे बताइए, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री अच्छी चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार निर्माण होगा। अब ये बैकवर्ड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश गंगा के कारण, झारखंड, बिहार और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, अब सब जगह पर इंडस्ट्री आएगी, गंगा के किनारे पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। और गंगा के किनारे से 4 मल्टीमोडल हब बना रहे, गाजीपुर, साहिबगंज और हल्दिया और अपना वाराणसी, यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट म्यांमार तक, बांग्लादेश तक जाएगा। मैंने बांग्लादेश में भी ड्रेजिंग किया, ब्रह्मपुत्र में भी हमने ड्रेजिंग किया है। अब रिवर पोर्ट बना रहे, वाटर पोर्ट्स, रिवर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, अभी रोरो सर्विस, रो पैक सर्विस शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है सी प्लेन ला रहे, कैटरमैन ला रहे, हेवरक्राफ्ट्स ला रहे, एयरबोट्स ला रहे। अभी तो हमने एक रशियन कंपनी के साथ बात करे कि इंजन ऑटोमोबाइल का होगा, पंखे प्रॉपलर हवाई जहाज के होंगे और पानी पे चलेगी। जो लैंड क्रूजर का इंजन, एक गाड़ी में 6 लोग बैठे थे, यहाँ 14 लोग बैठेंगे और 80 किलोमीटर की स्पीड होगी और 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चलेगी। हम इलाहाबाद, प्रयागराज से वाराणसी अब सर्विस शुरू करें 26 जनवरी को।
आप जो इनलैंड वाटरवेज कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। बट मेरा आपसे एक सवाल है सर, अगर आप इनलैंड वाटरवेज स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स रोड ट्रांसपोर्ट लॉबी इज गोइंग टू अपोज यू, सर उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं?
कोई लॉबी अपोज नहीं करती। अभी मैं नागपुर में हूँ, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ट्रांसपोर्ट सर्विस में 60 करोड़ का घाटा है, वो डीजल पर चलती है। फिर मैंने इनको कहा आप, हम लोग बायो CNG तैयार करेंगे राइस स्ट्रॉ से, और अभी वो तैयार हो गया। मैंने कहा ये हम आपको देते, मैं आपको लिख कर देता हूँ, अगले साल हमारा 60 करोड़ का घाटा निकल जाएगा। एक कॉरपोरेशन केवल CNG पे लाने से घाटा निकल गया 60 करोड़ का, और उनको तो उसमें पैसा जा रहा था डीजल में और डीजल के चोरी में। अब मुझे बताइए, हम ट्रैक्टर 18 साल पुराना हमने बायो CNG पे लाया, मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, एक ट्रैक्टर वाले को 1 लाख रुपए का डीजल साल में लेता है तो 40,000 रुपये का खर्चा करेगा, 60,000 उसकी बचत होगी। देखिए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ देश का भविष्य है। और विशेष रूप से रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में नए रिसर्च का उपयोग करके इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाकर, इकोनॉमिक के ग्रोथ इंजन को एक्सीलरेट करके, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करके हम गरीबी दूर कर सकते हैं। और यही मकसद है कि हम आप रूरल और एग्रीकल्चर पर कॉन्सेंट्रेट करें।
सर, इनलैंड रिवरवेज के कारण रोड ट्रांसपोर्ट लॉबी डिड नॉट अपोज यू?
सर देखो, आपको बताता हूँ, परिवर्तन ये नेचर है, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं। एक समय वो घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो ऑटो रिक्शा आई तो क्या घोड़ा गाड़ी वाले चिल्लाने लगेगा, उन्होंने घोड़ा ऑटो रिक्शा खरीद लिया। अभी ऑटो रिक्शा इथेनॉल पर इलेक्ट्रिक पा रहा तो पेट्रोल डीजल छोड़ के उस पर ले लेंगे। अभी मैं नई योजना ला रहा हूँ, मैं साइकिल को प्रमोट करने वाला हूँ। अभी हमने जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बनाया उसमें साइकिल ट्रैक बनाया, अब मैं एक साइकिल की रैली करने वाला हूँ। और हर शहर में हम ऐसी एक स्कीम ला रहे हैं कि ऐसी साइकिल पड़ी रहेगी कहीं भी, लॉक हो जाएगी, फिर आपके पास कार्ड होगा, आप कार्ड लगाओ फिर साइकिल चलाओ, उतने पॉइंट जाएंगे जहाँ है वहाँ बंद हो जाएगी, डाल दो फिर दूसरा आदमी लेगा। हम मेट्रो के स्टेशन यहाँ वो, तो साइकिल ये ट्रांसपोर्ट का साधन हो। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी ये हम कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक पर लेके जा रहे हैं, इथेनॉल पर लेके जा रहे हैं, मिथेनॉल पर ट्रक चलाने की बात कर रहे हैं, ब्रॉडगेज मेट्रो की बात कर रहे हैं। देखिए, जो जो नया रिसर्च आएगा वो बदलते जाएगा। एक समय कोई धोती पहन रहा था, पैंट पहनने लगा, पैंट है तो जीन पहनने लगा, तो ये परिवर्तन नियम होता है, इससे किसी का आखिर उसमें जगह मिलती है, वो कुछ नया कर लेता है। देखिए, इससे किसी का विरोध नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर हिंदुस्तान में अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट, अगर वो इलेक्ट्रिक पर और इथेनॉल पर आ जाएगा तो टिकट के दर आधे होंगे और सब गरीब लोग एयर कंडीशन बस में घूमेंगे। अभी नागपुर में इथेनॉल की 35 बसें चलती है, एयर कंडीशन है, और अभी वो बीच में इन्होंने पैसे नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम आया था, अभी चालू है। आप देखो, बस हमारे यहाँ के गरीब लोग वही टिकट दे के एयर कंडीशन बस में घूमेंगे, क्या ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है?
यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। MSME सेक्टर इज इन अ स्ट्रेस, आपकी जो मिनिस्ट्री है जिसने लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं सर, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है एमएसएमई सेक्टर पे क्यों नहीं आया है सर? क्योंकि सेक्टर इज स्टिल इन अ प्रॉब्लम सर।
देखो, एमएसएमई के लिए अभी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा पैकेज दिया,
काफ़ी लेट दिया ना सर।
देखिए, ऐसा है, सरकार में भी एक प्रक्रिया होती है और प्रधानमंत्री जी ने इस बार इस जो एमएसएमई को जो पैकेज दिया है, मेरी जो जानकारी और मेरा ज़्यादा अध्ययन नहीं है, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि एमएसएमई का हमारे ग्रोथ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, एमएसएमई को हम डिजिटलाइज करें, जैसे अभी गुड़गांव में खूब इंडस्ट्री है, अब मैं नया रोड बना रहा हूँ गुड़गांव से मुंबई का, पूरा ट्राइबल सेक्टर है। अब गुड़गांव में लैंड अगर 2.5 करोड़ रुपये एकड़ है तो उनको 40 लाख रुपये 25 लाख रुपये एकड़ मिलेगी। अब वो नए एरिया है, वहाँ गुड़गांव बनाओ, वहाँ लॉजिस्टिक पार्क बनाओ, वहाँ इंडस्ट्री ले जाओ। तो हमको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इंडस्ट्री का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, एक्सपोर्ट, इसके लिए हमको कोशिश करनी होगी। और हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी कर रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी कर रही है। पर मैं आपको बताऊँ कि अब प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतने प्रॉब्लम्स हैं और हम जो काम कर रहे हैं तो रोज़ नई नई बातें आ रही हैं, नई नई डेवलप हो रही है, हमको और गति बढ़ानी होगी। और इसलिए मैंने आज ही सुबह एक चैनल में कहा था कि हिंदुस्तान की जनता को अपने ओपिनियन को परफॉर्मेंस के आधार पर, इकोनॉमिक पॉलिसी के निर्णय के आधार पर, अपना एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, डेवलपमेंट के इशू के आधार पर, सरकार का परफॉर्मेंस क्या इसके आधार पर वोट देना चाहिए, न कि जात पंथ धर्म और भाषा के ऊपर देना चाहिए। मैं लोगों को सवाल पूछता हूँ, तुमको जब हार्ट का ऑपरेशन करना होता तुमको बेस्ट डॉक्टर चाहिए, तब तुम नहीं बोलते कि मेरा जात वाला इसके साथ कर लो। तुमको जब रेस्टोरेंट में खाना है तुमको बोलते बेस्ट रेस्टोरेंट चाहिए, तब तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, फिर चुनाव में वोट देते समय क्यों सोचते हो?
आपकी आपकी मिनिस्ट्रीज ने वाकई बहुत बढ़िया काम किया है, वी ऑल थिंक सो। सर, ये जो अभी राज्य चुनाव हुए थे उसमें सर बीजेपी को आपके परफॉर्मेंस का डिविडेंड क्यों नहीं मिला सर?
देखिए, माने तो ये बात सच है कि डेवलपमेंट का एजेंडा ये चुनाव का विषय है, पर ये एकमात्र विषय नहीं है। रीजनल विषय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के विषय होते हैं, एंटी इनकमसी होती है, स्टेट के होते हैं, उम्मीदवार के होते हैं, मंत्रियों के होते हैं। अब किसानों के भी इस समय ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमी, देखो चीनी का भाव ब्राज़ील तय करता है वर्ल्ड में, अब कॉर्न का भाव अमेरिका तय करती है, तेलों का भाव अर्जेंटीना सोयाबीन का तय करता है, पाम ऑयल का मलेशिया तय करता है। अब मुझे बताइए, दाल भी है शॉर्टेज थी, हमने खूब लगाई, 180 रुपये किलो की दाल 50 रुपये आई, प्याज एक समय 80 रुपये किलो हो गया था तो लोग गले में 50 पैसे नहीं कोई ले रहा। हमको कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क, स्टोरेज सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। और एग्रीकल्चर क्राइसिस है, एग्रीकल्चर को लगने वाला खाद बिजली सस्ती करनी होगी, सीड सस्ता देना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ड्रिप इरीगेशन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें। और इकोनॉमिकली वायबल एग्रीकल्चर किए बिना किसान को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए हम लोग कोशिश करें, फसल बीमा योजना हमने लाई, बहुत सी बातें कर रहे हैं, पर क्राइसिस भी बड़ा है
सर। आई थिंक
कभी कभी इन विषयों के लोगों में कुछ रिएक्शंस भी होती
है। आई थिंक सर, इफ यू एग्री विद मी, अभी सिचुएशन ये है, महंगाई कम है लेकिन सर इनकम भी कम हुई है, एंड दैट इज द रियल प्रॉब्लम सर।
हमको इनकम भी बढ़ाना है और महंगाई को कम करना है। देखो, ये बात बराबर है आपका कि इस समय रिसेशन का अगर बात करें तो उस दृष्टि से हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है और बढ़ाने की आवश्यकता है, और इनकम भी बढ़ाना होगा। इनकम बढ़ेगा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा। तो अभी हमारे देश का जो GDP है 52 से 54% सर्विस सेक्टर से है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, और 8 से 11% एग्रीकल्चर से है। अब एग्रीकल्चर में हमको 65% पॉपुलेशन है, एग्रो बेस डेवलपमेंट को हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का नया मॉडल तैयार करना पड़ेगा और वो बनाने की आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।
मेरा एक सवाल ILFS से है, क्योंकि NHAI और ILFS का एक क्लोज संबंध था सर, वो क्राइसिस क्या NHAI पे आई ILFS के कारण?
नहीं, ILFS को मैंने कहा है कि जितने प्रोजेक्ट अधूरे पड़े वो पूरे करने में आप सहयोग करो, आप रिप्लेसमेंट करो और पूरा कर लो, बाद में भेज दो। जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं है उसको टर्मिनेट करो विन विन सिचुएशन में, जो अधूरे पड़े जो आप करना नहीं चाहते उसको क्लोज कर डालो, बैंक के साथ आप सेटलमेंट करो, हम उतना कॉस्ट एक थर्ड अपॉइंटमेंट करते हैं वैल्यूअर को, वो अपॉइंट करके जो वैल्यू होगी वो बैंक को दे देंगे, हम नया टेंडर निकाल के उसको पूरा कर लेंगे। हम पॉजिटिव अप्रोच से रिजॉल्व करने के पीछे लगे हैं और मुझे लगता है कि हम रिजॉल्व कर पाएंगे, उनकी मैनेजमेंट भी और हम मिलकर मार्ग निकालेंगे, क्योंकि किसी भी संस्था को ऐसे हमने ख़त्म करना ठीक नहीं है। हमको जो तकलीफ में उनको बचाना होगा, जो फ्रॉड है, मैनिपुलेटर है, जिनने गलत काम किया उनको सज़ा करनी होगी, जो बोनाफाइड्स है उनकी गलतियाँ होगी तो उनको मदद करना होगा, और इकोनॉमी को मजबूत करके एक्सेलरेट करना होगा ताकि ग्रोथ रेट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े और गरीबी दूर हो।
इट वॉज नाइस सर लिसनिंग फ्रॉम यू कि पैसे की कमी नहीं है, देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ मनी और फॉर योर मिनिस्ट्री सर। सर लेकिन ये लिक्विडिटी जो क्राइसिस है, सरकार का मानना ये है दैट देर इज नॉट इनफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम, इसलिए रिजर्व बैंक और सरकार की एक डिस्प्यूट चल रही है, बट सर दैट इज़ अ कॉन्ट्री टू योर एक्सपीरियंस सर।
देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये रिजर्व बैंक का भी चर्चा मुझे समझ में नहीं आती। रिजर्व बैंक स्वायत्त है तो देश के इकोनॉमी के अप डाउन के अलावा उनको जिम्मेदार पकड़ो। आप फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ते, प्रधानमंत्री को पकड़ते, जिम्मेदार पकड़ते, भारत सरकार को पकड़ते हो और हमको बोलते हो वो स्वायत्त है। देखो तो हम डे टू डे उनके काम में हस्तक्षेप करने के मैं भी विरोध में हूँ, पर अल्टीमेटली देश के विकास की इकोनॉमिक पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट तय करेगा, वो तो सबके ऊपर बंधनकारक रहेगी, कोर्ट की बात अलग है। इसलिए उनकी स्वायत्तता है भी और सरकार का कंट्रोल भी है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऐसे ऐसे सर्कुलर निकाल रहा है कि देखो सब डिमोरलाइज हो गए। रिजर्व बैंक का काम इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का है, सबको बंद करके सबको दिवाला पिटाना ऐसा नहीं है। जो फ्रॉड है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करो, जिन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया उनके ऊपर करो, पर जो लोग ड्यू टू ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनल इकोनॉमी और बाकी कारणों में आते हैं तो उनको देखो, मुझे बताओ साहूकार भी कर्जा बांटता है तो 20% डूबता है ना। तो बिजनेस में रिस्क होती है, बैंकिंग इज ए बिजनेस, तो कुछ OTS करना पड़ेगा। वर्ल्ड में होता है, अमेरिका में होता है, जर्मनी होता है, जापान में होता है, कुछ OTS करो फिर पैसा इन्वेस्ट करो, इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमी। और इस समय इस सिस्टम में आपने थोड़ा भी जैसे एक अकाउंट फायदेशीर हुआ तो ठीक है, लॉस में आया तो बैंक वाले जिम्मेदार, ये ऐसा करके नहीं चलेगा। केस टू केस हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसलिए रिजर्व बैंक का अप्रोच डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, इकोनॉमी को एक्सेलेट करने वाला चाहिए, बोनाफाइड डिफॉल्केशन को मदद करके सॉल्व करना चाहिए, और जो फ्रॉड है, जिन्होंने गलत काम किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने वाला चाहिए। वन साइड जो भी NPA वाला उसके साथ एक सूत्र में जाए, अच्छा बुरा सब एक जगह, ऐसा नहीं होगा। इसलिए रिजर्व बैंक ने बीच में ऐसे सर्कुलर्स एक के पीछे एक निकाले और बैंकों का लगभग सिस्टम रुक गया था। मैंने भी नाराजगी जताई उस समय। आज हमारे बताइए 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हो रहा, फिर इकोनॉमी को टैक्स कहाँ से मिलेगा, ग्रोथ कहाँ से बढ़ेगी, GDP कहाँ से बढ़ेगा। अगर आज के स्थिति में हमारे सिक्योर्ड प्रोजेक्ट है, लैंड एक्विजिशन हुई है, टोल है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, रिस्क नहीं है और आप फाइनेंस ही नहीं कर रहे हैं, तो बैंक कैसे प्रॉफिट में आएगी? और बैंक प्रॉफिट में नहीं आएगी तो बैंक चल कैसे पाएगी? आप डिपॉजिट ले रहे हो और फाइनेंस ही नहीं कर रहे हो, आप 50-50 करोड़ की बैंक गारंटी नहीं दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये टोटल अप्रोच में एक पॉजिटिव अप्रोच, बोनाफाइड जो गलतियाँ है NPAs है उसको मदद करो, वे आउट करो, जो मदद करने के बाद चल नहीं सकते उनको बंद करो, NCLT में भेजो, जो फ्रॉड है जिन्होंने गलत काम किया उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करो, जिन्होंने फ्रॉड लोन के लिए लोन दिया है जो मिले ऑफिसर उनको कार्रवाई करो, जो अच्छे लोग हैं उनको मॉरली सपोर्ट दो, और पॉजिटिव अप्रोच रख के ट्रांसपेरेंसी के साथ इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना है, ये समझ के अगर चलेगा तो मुझे लगता है तस्वीर बदल जाएगी।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज़ नॉट केप पेस, जबकि आपकी मिनिस्ट्री हैज़ केप पेस विद इट। सर बाकी सेक्टर से या बाकी मिनिस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं हुआ सर?
देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा सकता है।
सर मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सी बातें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ भी जुड़ी हुई है। आप देखिए जैसे अभी सॉल्वेंट प्लांट्स, अभी मलेशिया में पामोलिव तेल इतना सस्ता हुआ कि यहाँ सोयाबीन खरीदी करके ऑयल मिल चलाना पूरा था नहीं।
डोंट यू फील सर मैन्युफैक्चरिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी एक गैप है सर?
नहीं, हमने 1400 निर्णय किए, गैजेट नोटिफिकेशन लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई और सिस्टम में से करप्शन को लगभग हमने समाप्त किया। दिस इज द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये स्वीकार नहीं होगा।
Employment is still a problem and I think sir politically it is a problem for
sir,
the BJP.
एक बार जब तक agriculture में development नहीं होगी तब तक employment potential नहीं मिलेगा। गांव से सब लोग शहर में भाग रहे हैं, urban population बढ़ रही है, तो आखिर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? जब तक इरीगेशन नहीं होगा, ड्रिप नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं आएगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर जो मैं कह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल का पर रहा है कृषि में धुंधला जाएगा, और हवाई जहाज भी चला है जेट्रोफा पे ऑयल पर, तो क्यों नहीं हमारे पूरी एविएशन 30,000 करोड़ की फ्यूल हम जंगल में बनाए? धीरे धीरे पॉलिसी बाम्बू लगा रहे हैं हम लोग, उससे बायोइथेनॉल बना रहे हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट वेल्थ कचरे से इथेनॉल बन सकता है। सो न्यू इनोवेटिव न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हमको देश में नई नीति अपनानी पड़ेगी, और ये नई भारत की विकास की सोच प्रधानमंत्री ने सामने रखी है, और मेरा विश्वास है कि देश बदल रहा है।
सर, लास्ट क्वेश्चन सर, 2019 इलेक्शंस, आपकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस, विल इट बी द लोकोमोटिव ऑफ बीजेपी ग्रोथ सर, ऑफ बीजेपी विक्ट्री?
देखिए, कर्मण ने विकारे से वहा फलेषु कदाचन, मैं इतना विचार नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। मुझे चुन कर आना है, मेरे पार्टी को चुन के आना है, ये निश्चित रूप में हमारी आवश्यकता भी और इच्छा भी है, पर हम केवल इसके लिए काम नहीं करते। हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हो, गाँव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, वर्ल्ड की नंबर एक की इकोनॉमी बने, ये हमारा सपना है, हमारे हाथ में है, तब तक हम कोशिश करेंगे। अगर दूसरे आए तो वो भी करें, किसके हाथ से वो, ये प्रश्न बड़ा नहीं है, पर ये देश आगे जाए, ये देश विश्व की ताकत बने और देश दुनिया की एक ताकत बने, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, सैटेलाइट हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी, हमारा देश सब बातों में आगे जाए, यही हमारी इच्छा है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं और देश आगे जाना यही हमारा मकसद है और यही हमारी भावना है।
गडकरी जी, आपसे बातचीत करने का आपने हमें मौका दिया, उसके लिए we are grateful. धन्यवाद. What I can tell you, sir, is as a citizen of this country, as a senior minister, sir, you quote facts, figures and projects which actually shows your involvement in your ministry, and thank you for it as a citizen of the country. But I would really wish, sir, that your kind of a performance.
मैं आपको तीन बातें और बता दूँ.
Sir,
मैं गंगा पर 280 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं निर्मल और अविरल गंगा बनाऊँगा। ये प्रोजेक्ट मैं 25% प्रोजेक्ट मार्च तक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे गंगा 70-80% शुद्ध होगी और नेक्स्ट मार्च में 100% होगी और गंगा अविरल भी होगी, निर्मल होगी, ये मेरे लाइफ का मिशन है। बाद में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को 12,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ, अब वो इन्वायरमेंट वाला स्टे दे दिया, पर ये पूरे हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, ये मेरा बहुत टचिंग टू माई हार्ट। फिर मैं पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बना रहा हूँ, 70% काम पूरा हुआ, वो नेपाल और चाइना, बहुत कठिन काम है, -8 डिग्री टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर।
चाइना ने परमिशन दी,
चाइना के बॉर्डर तक, और फिर 5-7 किलोमीटर चाइना का है, तो वो रोड बने, ये मेरा सपना है। फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, बंगलोर चेन्नई 12-13 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, फिर जलमार्ग 10 बना रहा हूँ। मेरे को लगता है कि ये देश बदले, ये देश दुनिया की शक्ति बने, और ये सब काम करने की जो प्रेरणा है, मंत्री पद तो मुझे भगवान ने दिया आशीर्वाद के रूप में, मैं एक एक मिनट में ये सोचता हूँ कि मैं देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए कितना ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं सुखी हूँ, मेरे घर में अच्छा हूँ, राजनीति मेरा पेशा नहीं है, चुनाव जीतना नहीं जीता तो कोई फर्क नहीं, वैसे मैं पॉलिटिशियन हूँ तो स्वाभाविक रूप से एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन, चुनाव जीतने के बाद तो है ही, मैं जीतूँ या हारूँ, पर यहाँ काम होता रहे, लोगों को राहत मिलती रहे, लोग आगे होते जाए, इकोनॉमी बदलती रहे और देश समृद्ध और संपन्न बनते रहे, यही प्रक्रिया चलनी चाहिए, यही राष्ट्रवाद का विचार है और यही हमारी प्रेरणा।
इट हैज बीन अ प्लेजर मीटिंग मिस्टर गडकरी, ही कम्स अक्रॉस एज अ हैंड्स ऑन मैन, व्हिच इज व्हाट ही इज नोन फॉर, अ सीनियर मिनिस्टर कोटिंग स्टैटिस्टिक्स, फिगर्स, प्रोजेक्ट्स विद सच एक्यूरेसी मींस ही इज अ मिनिस्टर इन्वॉल्व विद हिज मिनिस्ट्री एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन ऑल द हार्ड वर्क दैट ही इज डूइंग। वी रियली होप दैट हिज विजडम, हिज एक्सपीरियंस, हिज एक्सपर्टीज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो गोज to other departments and ministries of the government of India, which are actually suffering or languishing because of non-performance, because of absence of this kind of wisdom and expertise. This is Akhilesh Bhargav signing off for HW News. Namaskar.
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।